Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
पहली बार वह मरुभूमि की यात्रा कर रहा था और उसको प्यास लगी, वह प्यासा था। तो स्वाभाविक ही है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को चाहता है वह उसी को खोजता है, स्वाभाविक ही है, क्योंकि वह उस समय उसके लिए पानी की आवश्यकता थी, इसलिए वह पानी के ही खोजी में लग पड़ा। तो उस प्यास तो उसको सुबह ही लगी थी, प्यास उसको सुबह लगी थी, और सुबह सुबह एक तो प्यास लगी, दूसरी बात है कि वह कोई सनातनी हिंदू ब्राह्मण रहा होगा निष्ठावान, तो उसको ये लगा कि पानी नहीं है तो मैं कैसे स्नान करूं, तो कैसे संध्या करूंगा, कैसे मैं जप तप करूंगा, कैसे ईश्वर आराधना करूंगा, कहीं यदि पानी मिल जाए तो मैं खूब पानी भी पीऊंगा, नहा लूंगा, फिर उसके बाद पाठ करूंगा, पूजा करूंगा, ध्यान करूंगा, जप करूंगा, तप करूंगा, ये जब ना ही नहीं पा रहा हूं तो मैं संध्या वंदन कैसे करूं, जप पूजा पाठ कैसे करूं। तो उसको सुबह सुबह पानी की तलाश रही, इधर खोजता है, उधर खोजता है, उधर खोजता है, कहीं पानी नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे उसकी खोजी भी जारी है, खोजी के साथ साथ समय व्यतीत होता जा रहा है, उसकी खोजी जारी है। और जब धीरे धीरे दिन का जब मध्यान्ह का समय हुआ, सूर्य अंतरिक्ष में मध्य में आ गए और तेज प्रचंड रूप में प्रकाशित होने लग गए, तब पानी का संस्कार उसके अंदर विद्यमान था, पानी की वासना उसके अंदर थी, और साथ ही सूर्य के किरण उन मरुभूमि के जो रेत थे उसमें पड़ गए और उसमें से चमक निकलने लग गया, तो कुछ दूरी पर उसको पानी की प्रतीति हो गई, भ्रांति हो गई। और क्योंकि भ्रांति बिल्कुल नजदीक हो तो फिर भ्रांति नहीं होती है, अति दूर हो तो भी भ्रांति नहीं होगी। आपको मरुभूमि बहुत दूर है तो यहां बंबई बैठे हुओं को पानी की भ्रांति नहीं होगी, अति दूर होने पर भी भ्रांति नहीं होगी, बिल्कुल सामीप्य होगा तो भी पदार्थ अपरोक्ष हो जाएगा, तब फिर उसको भ्रांति नहीं होगी। तो भ्रांति के चार साधन हैं, बता दिया गया है आप लोगों को, कहीं भी भ्रम ज्ञान पैदा होने के लिए, भ्रांति पैदा होने के लिए ये चार साधन चाहिए। सबसे पहले अधिष्ठान इदम चाहिए, दूसरी बात जिसकी भ्रांति होनी है उसका संस्कार होना चाहिए, तीसरी बात मंद अंधकार होना चाहिए, स्पष्ट प्रकाश नहीं होना चाहिए, चौथी बात संस्कार होना चाहिए, संस्कार इदम मंद अंधकार और सादृश्य, सादृश्य ये भी जरूरी होता है। तो ये चार साधन के द्वारा वह भ्रांति हो जाती है, कोई भी पदार्थ आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखने ला, कोई भी अधिष्ठान में कोई भी पदार्थ नहीं दिखेगा, अधिष्ठान का जैसा सादृश्य है उसी सादृश्य के संस्कार होने चाहिए, अधिष्ठान और संस्कार दोनों की सादृश्यता मिल जाए, समान आकार मिल जाए तो आपको भ्रांति हो जाएगी। जैसे सर्प के सादृश्यता रस्सी, रस्सी के सादृश्यता सर्प, ये देख लो, जिस आकार का सर्प रस्सी है और उसी आकार का सर्प का संस्कार है, तब फिर उसी आकार के रस्सी के प्राप्त होते ही वह सर्प की भ्रांति हो गई। एक गोल मटोल पत्थर में सर्प की भ्रांति नहीं होगी, क्योंकि सर्प के आकार से वह अधिष्ठान पत्थर की सादृश्यता नहीं है। हाँ, सादृश्यता होना बहुत जरूरी, जैसे सीपी की चमक और चांदी की चमक में सादृश्यता है, इसीलिए सीपी में चांदी की भ्रांति हो जाती है, और इसी प्रकार से सर्प की और डोरी की सादृश्यता है, इसलिए डोरी में सर्प की भ्रांति हो जाती है, इसी प्रकार से जीव चैतन्य में और कूटस्थ ब्रह्म चैतन्य में सादृश्यता है। आभास चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य में सादृश्यता है, तब अज्ञानियों को जीव ही परमात्मा है मानकर वह अज्ञानी बैठ जाता है। आपको पता चला? यह दृष्टांत ध्यान से सुन लेना। आप अभी अपने को जो जीव मान रहे हो, जीव मानने का कारण क्या है? सादृश्यता के चलते आप जीव को मान रहे हैं। हाँ? किसके सादृश्यता? ब्रह्म के चैतन्य के सादृश्यता आपकी आभासित चैतन्य के साथ मिल गई। आप समझ गए कि नहीं? ये थोड़ा सा मैं नया शब्द प्रयोग कर रहा हूं आपको। आपको इस समय मैं कर्ता भोक्ता जीव हूं, सत्य हूं, यथार्थ हूं, वास्तविक हूं, ये आपको जो बोध हो रहा है ना, ये बोध का कारण क्या है पता है? आप वास्तव में कर्ता नहीं है, आप वास्तव में भोक्ता नहीं है। आप ये कर्ता भोक्ता पना आपकी पारमार्थिक नहीं है। जन्म मृत्यु सुखी दुखी कर्ता भोक्ता पना आपकी पारमार्थिक स्वरूप नहीं है, फिर भी आपको यही लग रहा है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं यथार्थ हूं, मैं वास्तविक हूं, यह आपको लग रहा है। ये लगता क्यों है? क्योंकि आप प्रतिबिंब हैं और बिंब की सादृश्यता आप में आ गया। बिंब कैसा है तो बोले चैतन्य है, बिंब सत है, चित है, आनंद रूप है और पारमार्थिक सत्य है। उसी का प्रतिबिंब आपके अंतःकरण में पड़कर जीवात्मा चिदाभास खड़ा हुआ है। तो ब्रह्म की चेतनाता की सादृश्यता अंतःकरण में पड़े हुए चिदाभास की भी चेतनाता दिखने लग गया तो आप भ्रांति से यही ब्रह्म है ये कहने लग जाओगे। और इसी के चलते मैं यथार्थ हूं, ब्रह्म की यथार्थता पारमार्थिक सत्यता अंतकरण में पड़े हुए चिदाभास में भी तत्सादृश्यता दिखाई पड़ गया, तब आपको लगने लगा कि मैं कर्ता भोक्ता, मैं पारमार्थिक हूं, यथार्थ हूं, सत्य हूं, यह आपको लग रहा है। तो ये सादृश्यता है, इसीलिए आपको मैं कर्ता भोक्ता चिदात्मा पारमार्थिक हूं ये भ्रांति हो रही है। अब जब अनुसंधान करने लग जाओगे तो भ्रांति का कारण हट जाएगा। तब आपको जब कूटस्थ का बोध होगा तो बोले अरे ये अकर्ता अभोक्ता है कूटस्थ, सच्चिद आनंद तो कूटस्थ है, मैं तो केवल खामोखाम मैं ही सच्चिद आनंद मानता रहा। ये तो आपको चिदाभास के रूप में सच्चिद आनंद वेदांत नहीं बोलता है कभी भी, कूटस्थ के रूप में आपको सच्चिद आनंद कहता है। अब ये भ्रांति क्या होती है? जैसे दर्पण के मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आपकी आकृति और दर्पण के अंदर दिखने वाले पदार्थ की आकृति मिलती है, तब आपको भ्रांति होता है कि दर्पण के अंदर जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, सांसू छे। हाँ आ तो सांसू छे, महाराज मुख छे, मेरा ही मुख है और तुम्हारे मुख तो गर्दन के ऊपर है, वहां कहां से आ गया? तो सादृश्य का यही तो भ्रांति का सब कारण होता है। यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकम् असत् कल्पार्थकम् भासते। तो इस भ्रांति को फिर तोड़ेंगे कब? ये भ्रांति हटेगा कब? असत कल्प पदार्थ भी सत के रूप में प्रतीत होता है। किसके चलते? बोले जिस सत के स्फुरणा के चलते असत पदार्थ भी सत के तरह प्रतीत होता है। अब यह भ्रांति टूटेगी कैसे? साक्षात तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोध इत्याश्रितान। ये भगवान शिव के बारे में, गुरु मूर्ति के बारे में कहा गया है, दक्षिणा मूर्ति के बारे में ये कहा गया है। आश्रितान, ये आश्रितान माने अपने आश्रय में रहने वाले को, परमात्मा के आश्रय में रहने वाले को कभी भी जगत सत्यत्व की भ्रांति नहीं हो सकती है। बात समझे? दीपक के आश्रय में रहने वाले को कभी भी रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं हो सकती है। दीपक के आश्रय में रहने वाले को ध्यान देना, प्रकाश के दीपक के आश्रय में रहने वाला या चलने वाले को कभी भी रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं होगी। होगी? दीपक के आश्रय में रहने वाला का मतलब क्या हुआ? दीपक को घर छोड़कर वो बाहर जाएगा नहीं। जो दीपक के आश्रय में रहेगा तो दीपक को साथ में लेके जाएगा ना। ध्यान देना, दीपक के आश्रय में रहने वाला व्यक्ति दीपक को छोड़कर कभी जाएगा अकेले? प्रकाश के आश्रय में रहने वाला व्यक्ति प्रकाश को छोड़कर कहीं वो गमन करेगा? हैं? नहीं करेगा। और जब प्रकाश को छोड़कर गमन नहीं करेगा, जब भी कहीं भी जाएगा तो प्रकाश को लेकर ही जाएगा, तो उसको रस्सी में सर्प की भ्रांति होगी। रस्सी में सर्प की भ्रांति किस कारण से होता है? प्रकाश के अभाव के कारण। बात समझ गए कि नहीं? जिस प्रखर प्रकाश की आवश्यकता थी, वह प्रखर प्रकाश के अभाव के चलते न होने के कारण रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई। और प्रकाश के आश्रय में रहने वाला तो प्रकाश साथ में लेकर चलेगा, तब जब भी वो प्रकाश का प्रयोग होगा, साथ में है प्रकाश, इसलिए प्रकाश का प्रयोग करेगा तो रस्सी रस्सी के रूप में ही प्रतीत होगा, सर्प के रूप में भ्रांति होगी नहीं। जब रस्सी रस्सी के रूप में प्रतीत होगा तब तो अधिष्ठान का ज्ञान होते ही अध्यास तब वस्तु बाधित होता है। जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा तो अध्यास का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, भ्रांति का अवसर ही प्राप्ति नहीं होगा। तो प्रकाश के आश्रय में रहने वाले को रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं होती। इसी प्रकार से गुरु के आश्रय में रहने वाले को या परमात्मा के आश्रय में रहने वाले को कभी भी जगत सत्यत्व की भ्रांति नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि गुरु बार बार उसको बार बार उसको बोध कराते रहेंगे, सावधान, ख्याल रखना। लेव जी, गुरु के सामने जाकर कहो कि गुरुदेव, मैं पहले बहुत जवान था, बहुत सुंदर था, अभी तो गरड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, गाल की खाल भी सिकुड़ने लग गई, अब तो मैं कुरूप हो गया, क्या करें महाराज? है? तो गुरु क्या कहेंगे? ये तो होना ही था। यही कहेंगे कि नहीं, बोलो? ये तो होना ही था। होना था मतलब, अरे बाबा, ये तो पदार्थों का धर्म है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयति विनश्यति। अभी तो गाल के खाल सिकुड़ गए, अभी तो पांव कांपने लग गए, अभी हाथ कांपने लग गए, नेत्र मंद हो गए, कान मंद हो गए, दांत गिर गए, है? अभी तो यही है ना। अरे देखते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा ये सब नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। गुरु ये कहने में संकोच नहीं करेगा आपके सामने। संकोच करेगा? ये वस्तु एक दिन नष्ट हो जाएगा ये कहने में गुरु संकोच करेगा? तुमको अत्यधिक प्रिय है, और जितना भी प्रिय हो वे, प्रिय होने पर भी गुरु ये कहने में संकोच नहीं करेगा कि जो तुम्हारे लिए अत्यधिक प्रिय है वह एक दिन नष्ट होने वाला है, ये कहने में गुरु संकोच नहीं करेगा। हाँ, और यदि ये संकोच करता है तो वो गुरु ही नहीं है। इसका जो अत्यधिक प्रिय पदार्थ वस्तु है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये थोड़ा अप्रिय शब्द है, होना तो नष्ट है, फिर भी मैं कह दूं तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, अप्रिय है करके वो संकोच करेगा तो फिर गुरु ही नहीं होगा। वो तो यथार्थ बात सामने रखना, गुरु का लक्षण है, जो जैसा है उसको उसी रूप में रख देना, ये गुरु का लक्षण है। शिष्य यदि सीपी को बोरा में भर के ले आवे, ध्यान देना मैं दृष्टांत तो दूसरा दे रहा हूं, मैं दृष्टांत तो ज्यादा दिया करता हूं। शिष्य सीपी को बोरा में भर कर ले आवे और गुरु के सामने कहे कि गुरु महाराज मेरे पास एक बोरा चांदी है, मैं एक बोरा चांदी लेके आया हूं, अब तो मैं मालो माल हो गया हूं, क्योंकि उसको सीपी में चांदी की भ्रांति हुई, बोरा भर कर ले आया। गुरु ने जाकर देखा कि एक बोरा चांदी है, जरा दिखाओ। एक बोरा है तो थोड़ा सा हमको भी दे दे, आश्रम में अन्न क्षेत्र में काम आ जाएगा, हॉस्पिटल में काम आ जाएगा, गुरुकुल में काम आ जाएगा, वृद्धाश्रम में काम आ जाएगा, है थोड़ा तो तू हमको भी दे देना, देगा कि नहीं है? गुरु आप कहते हो तो थोड़ा देंगे भाई, ज्यादा तो नहीं देंगे है? गुरु मांगेंगे तो देना पड़ेगा ना भाई, अन्न क्षेत्र में मांगेंगे, हॉस्पिटल के लिए मांगेंगे, पुस्तक प्रकाशन करने के लिए मांगेंगे है? स्वाध्याय क्लास चलाने के लिए मांगेंगे, गुरुकुल चलाने के लिए मांगेंगे, सबका सब तो नहीं देंगे, थोड़ा तो देंगे ना। एक बोरा चांदी रखा है, जरा देखा तो सही। गुरु गए, आओ जी। अंदर रखा था उसने, क्योंकि चोरी ना हो जाए, गुरुजी को ले गया अंदर, बोरा का मुख खोला और दिखा दिया, देख लो ये पूरा बड़ा बोरा भरा पड़ा है चांदी से। अब गुरु को पता चल गया ये तो पूरे के पूरे सीपी है, चांदी नहीं है, और शिष्य क्या कह रहा है, चांदी है। गुरु क्या कहेंगे, ये सीपी है, इसमें 1% भी चांदी नहीं है, ये पूरा का पूरा ये समुद्र के सीपी है, मिट्टी के भाव भी ये बिकने वाला नहीं है, ये जानते हुए यदि मैं ऐसा कह दूंगा तो इसको अप्रिय लगेगा, तो गुरु मौन हो जाएगा। सारू थयो राजेश, संभाल के रखना, काम आएगा, गुरु ये कहेगा। वो गुरु कह रहा जब तुम मेरे काम नहीं आ रहा तो तेरे किस काम का है। अरे बेटा किसने कह दिया ये चांदी है? बोले नहीं नहीं मैंने कहा, तूने किस आधार से कहा? देखो चांदी जैसा चमकता वैसे ये चमक रहा था, इसलिए चांदी है, क्या अंतर है? बोले बेटा चांदी तो इधर भी चमकता है उधर भी चमकता है, ये तो केवल इधर चमकता है उधर नहीं चमकता, उधर देख उधर तो नहीं चमक रहा है। बोले ये चांदी नहीं है, मिथ्या है, चांदी की तरह प्रतीत होना ये मिथ्या का लक्षण है, प्रतीत न होना ये मिथ्या का लक्षण नहीं है, प्रतीत होना परंतु चांदी नहीं है, चांदी की तरह प्रतीत होता है परंतु चांदी नहीं है, ये मिथ्या का लक्षण, ये मिथ्या है, निकाल कर बोरा फेंक दे बाहर। तो यदि आज गुरु इस प्रकार से अप्रिय उसको बोल देंगे, अप्रिय क्या है, ये चांदी नहीं है कहना ही उसके लिए अप्रिय है कि नहीं, लेकिन आज उसको अप्रिय है बोल देंगे तो वो समझ जाएगा, अप्रिय होने पर भी ये चांदी नहीं है करके निश्चय करके बैठ जाएगा। नहीं तो जिस समय उसको पैसे की जरूरत पड़ी और बोरा कंधे में लेकर जौहरी मार्केट सराफा बाजार जाएगा तो उस समय जौहरी भी उसको ये अप्रिय बोलेगा कि नहीं है? तो वहां जौहरी 10 वर्ष के बाद जौहरी अप्रिय सुनाएगा, तो आज ही सुना दो ना अप्रिय, और क्या। अरे भाई मरने वाला तो गुरु आज ही कह देगा ना, ये शरीर मरने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 वर्ष के बाद डॉक्टर कह देगा कि नहीं कि ये शरीर मर चुका है, बोलो कहेगा कि नहीं है? कभी न कभी एक दिन न एक दिन डॉक्टर कह देगा कि नहीं ये मर चुका है, नाश हो गया है, कहेगा कि नहीं। और वो 10 वर्ष के बाद वो अप्रिय जब उस डॉक्टर से सुनना है तो वही आज गुरु से सुन लो कि ये शरीर नाश होने वाला है, खत्म हो गई बात। अब इसको कहीं अप्रिय मानते हो तो मान लो, लेकिन उस अप्रिय से तो प्रिय है, उस अप्रिय से तो प्रिय ही है। आश्रितान यो बोधयत्याश्रितान, आश्रितान माने अपने आश्रय में रहने वाले को ये गुरुमूर्ति क्या करते हैं, साक्षात तत्वमसी दिवेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान। और देखो गुरु तो अप्रिय नहीं बोलते और अच्छा प्रिय बोलते हैं, साक्षात तत्वमसी, यह तो मैं कर्ता भोक्ता जीव जन्म मृत्यु वाला मानते हुए चल रहा था, गुरु तो यहां तक कह देते हैं कि तू तो न जन्मने वाला है, न मरने वाला है, न बूढ़ा होने वाला है, न रोगी होने वाला है, न भोगी होने वाला है, भोग और रोग तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को छूते हैं, रोग किस शरीर को छूता है, स्थूल शरीर को, और भोग कौन से शरीर को छूता है, सूक्ष्म शरीर को, भोग रोग तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर में है, और तू तो ये शरीर से परे है। साक्षात तत्वमसी महावाक्य के द्वारा सीध ही तू यह है, जैसे दशमस्तमसी करके संत बताता है, दसवा तू है, और तू कह रहा था कि दसवां मर गया, साथी मर गया, और 10 के 10 रो रहे हैं, किस लिए है, 10 के 10 रो रहे हैं किस लिए, दसवां मर गया करके, और जिस दसवें को मर गया कह रहे हैं वो 10 के 10 दसवां हो सकते हैं गिनती के क्रम में है, गोल बैठकर जहां से भी गिनती शुरू करोगे दसवां वही है, लेकिन गलती क्या कर रहे हैं, वह गोलाई को गिन रहा है क्योंकि गिनने वाला खड़ा है, गलती तो ये हो रहा है ना, गोल में बैठे हुए को तो गिन रहा है, गिनने वाला खड़े होकर गिन रहा है, अब गोलाई में तो 9 ही बैठे हैं, तो निश्चय हो गया कि आते समय 10 आए थे, गिनते समय में 9 मिल रहा है, है? यही तो भ्रांति है कि नहीं, पैदा होते समय तुमने सत्य माना था, पैदा होते समय तुमने सत्य माना था, शादी करते समय में पति और पत्नी को सत्य माना था, और जब देखते हैं तो छोड़ के चला जाता है, तो गलती हुई कि नहीं, तुम्हारी गिनती गलत हो गई कि नहीं, तुम्हें मान रहे थे कि हमेशा सत्य रहेगा, इसी तरह सत्य रहेगा, जिस तरह आज सत्य है इसी तरह हमेशा सत्य रहेगा, पति भी यही मानता था कि हमेशा सत्य रहेगा, पत्नी भी यही मानती थी कि हमेशा रहेगा है? और जब गिनती शुरू की तो घट गया, तो फिर रोना पड़ा कि नहीं, अरे भाई तुमने शरीर को गिन लिया था इसलिए रोना पड़ा है? आत्मा को गिन लिया होता तो रोना नहीं पड़ता हा? और दूसरी बात, हम तो ये कह रहे हैं कि आत्मा को गिन लिया होता, आत्मा तो गिनती का वस्तु है ही नहीं है? तो रोने लग गए, महात्मा ने कहा कि तुम किस आधार से कह रहे हो, बोले हमने गिना है 10 आए थे अब यह 9 है, गिना है, महात्मा ने आंख घुमा ली, 10 के 10 खोपड़ी वही है, फिर तुम कह रहे हो 9 कैसे गिना बोलो, तो सबके सब 9 बैठ गए लाइन में गोलाई में, और तो गिनने वाला था वो लाइन से बाहर आ गए। देखिए गुरुजी, हम गिनती में गलती नहीं करते हैं, सेंट जेवियर्स स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम कोई गलती नहीं करते हैं गणित में। देखिए 1 2 3 4 लाइन के सिर को हाथ रखते हुए गिन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देख लो कहाँ है दसवां। गुरु ने उसके सिर में रखा, ये दसवां मूर्ख अपने सिर में क्यों नहीं हाथ मारता है, तेरा सिर नहीं है, सिर में हाथ रख के गिनना है तो तेरे में भी तो गर्दन के ऊपर सिर है, ए सब करके रखना 10। अरे बात ठीक कह रहे दसवां, कहीं कुछ नहीं मरा है देख लो, बड़ा रोते रहे तूफान हो गया, अब गो खत्म। साक्षात तत्वमसीति वेद वोच सा यो बोध यत्याश्रितान, अपने आश्रय में रहने वाले को गुरु मूर्ति परमात्मा क्या करते हैं, तू ही सत अस्तिभाति प्रिय ये सच्चिद आनंद अद्वितीय, जिस ब्रह्म को तू खोज रहा है वही ब्रह्म तू है करके बोधयति, उस माया निद्रा से जगा देते हैं, माया निद्रा से जगा देते हैं, माया की भ्रांति से उसको जगा देते हैं। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। इस बोध का फल क्या है, गुरु जब जगा देता है उस जगने के बाद जगने का फल क्या है, अनुभूति क्या है, इस बात को ये तीसरे लाइन से स्पष्ट करेंगे, उसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।